उस रात जब उसने आस्तिक से अभय और उसकी माँ के बारे में सवाल किया, तो आस्तिक का उसके प्रति जो व्यवहार था वो अरुणिमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हर बार अपमानित, बलात्कार और खुद को जलील करते करते अरुणिमा थक चुकी थी। अभय और आस्तिक की माँ का क्या रिश्ता है और वो उनसे कैसे मिली थी, अरुणिमा को अब ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ना तो अब उसे किसी सच की तलाश करनी थी और ना ही किसी की सच्चाई को सामने लाना था। अरुणिमा सच में बहुत थक चुकी थी, हर किसी को खुश करने के चक्कर में। वो खुद कितनी नाखुश थी ये पहचान चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की इस शादी को सफल बनाने की, पर दो पहिए की गाड़ी में से सिर्फ एक पहिया खींचते खींचते उसकी भी शक्ति ने जवाब दे दिया था। क्या चाहा था अरुणिमा ने? एक सीधी साधी जिंदगी। पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखा था, एक अच्छे इंसान से शादी करने का सपना देखा था। एक छोटा सा संसार होगा जहां पर वो उस इंसान से प्यार करेगी और बदले में उसे भी प्यार मिलेगा। पर उसे मिला क्या? और उस दिन अरुणिमा ने ये फैसला किया, जब दुनिया में किसी को उसकी परवाह नहीं है तो वो भी किसी की परवाह नहीं करेगी। आज से और अभी से उसने मासूम और भोली भाली अरुणिमा को मार दिया था, और जो सामने थी वो एक नई अरुणिमा थी जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि अगर आस्तिक उसे किसी कठपुतली की तरह नचाना चाहता है तो अरुणिमा भी उसके इशारों पर एक कठपुतली की तरह ही नाचेगी। आस्तिक ने अरुणिमा की डोर अपने हाथों में ले रखी है, लेकिन अरुणिमा की चाल किस दिशा में चलेगी ये अरुणिमा खुद तय करेगी। उसने अपने भविष्य के लिए आस्तिक को एक झूठे जाल में फंसा रखा है, प्यार का जाल। अरुणिमा अच्छी तरह से जानती है कि आस्तिक उससे प्यार नहीं करता है और ना ही वो आस्तिक से प्यार करती है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को इसी झूठ भ्रम में रखे हुए हैं। जहां आस्तिक अपने हिसाब से इस खेल को खेल रहा है, तो वहीं अरुणिमा अपने हिसाब से इस खेल की चाल को आगे खेल रही है। दोनों को लग रहा है कि सामने वाला इस खेल में एक मोहरा है, पर दरअसल वो मोहरा नहीं है, वही खेल का असली खिलाड़ी है। अरुणिमा जानती थी कि अगर वो सीधे तरीके से आस्तिक से छोड़ने के लिए कहेगी तो आस्तिक ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके अलावा अरुणिमा के पास कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी के नाम पर उसका घर भी आस्तिक के पास है। अरुणिमा अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं है। अरुणिमा को हर कदम सोच समझ के रखना था, क्योंकि उसके पास ले देकर अब सिर्फ 10 महीने ही रह गए हैं। इन 10 महीनों में अरुणिमा के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और मिश्री भी अपनी 10वीं की परीक्षा पूरी कर लेगी। अरुणिमा ने धीरे धीरे आस्तिक से वो सब वापस लिया जो आस्तिक ने उससे छीना था। अरुणिमा ने अपना घर वापस मिश्री के नाम करवा लिया था। आस्तिक को पता भी नहीं चला कि अरुणिमा ने एक सेपरेट बैंक अकाउंट मिश्री के नाम खोल रखा है, जिसमें वो ज़रूरत के हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे डिपॉजिट कर रही थी। अपने अच्छे भविष्य के लिए अरुणिमा ने इस चीज़ को हथियार बनाया, जिसके लिए आस्तिक बचपन से तरस रहा था, एक प्यार का एहसास। शुरू शुरू में अरुणिमा के लिए भी थोड़ा मुश्किल था आस्तिक के मॉन्स्टर रूप को प्यार से झेलना, लेकिन धीरे धीरे अरुणिमा ने आस्तिक के दिए हुए जख्मों को प्यार से गले लगा लिया। अरुणिमा ने अब फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ जीने के लिए किसी रिश्ते में बंधकर नहीं रहेगी, उसे आज़ाद होना है, और इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद, वो हर रणनीति का इस्तेमाल करेगी। और इसके लिए उसने सबसे पहले आस्तिक की सबसे बड़ी कमजोरी, प्यार का इस्तेमाल किया है। देखना ये था कि शातिर दिमाग के इस खेल में किसकी जीत होती है, आस्तिक की या अरुणिमा की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और वो दोनों अपने अपने तरीके से इस खेल को खेल रहे थे। बस देखना ये बाकी था कि आने वाले समय में इस खेल का पलड़ा किसकी तरफ भारी होता है। अरुणिमा अब 2 रेस्टोरेंट और 1 होटल की मालकिन थी, और उसका घर भी अब मिश्री के नाम हो गया था। माँ, इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता ये किसने भेजा है आपके लिए? आस्तिक इस सीमा जी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आस्तिक के साथ इस वक्त प्रणाली खड़ी थी और सीमा का पेट थोड़ा सा उभरा हुआ था, लेकिन ये सामान्यता से ज्यादा ही निकला हुआ था, क्योंकि इस वक्त सीमा जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी। टेबल पर रखे हुए उस बड़े से गुलदस्ते को देखकर सीमा के चेहरे पर मुस्कान दुगनी हो जाती है। वो हल्का सा झुककर उस गुलदस्ते को उठाती है और उसमें लगे हुए प्यारे प्यारे गुलाब के फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे पापा ने भिजवाया है। आस्तिक मुस्कुराते हुए टेबल पर चढ़ जाता है और उन फूलों को छूते हुए कहता है, माँ, ये फूल तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपके जैसे। सीमा मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, अच्छा तो मैं इस वक्त तुम्हें फूल नजर आ रही हूँ? कौन सा फूल नजर आ रही हूँ, गुलाब का या गोभी का? सीमा की बात सुनकर छोटा सा आस्तिक और छोटी सी प्रणाली दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, और तभी दरवाजे से उन्हें अभय की आवाज़ सुनाई देती है, तुमको गोभी के फूल में भी गुलाब का फूल नजर आती हो। अभय को देखकर आस्तिक और प्रणाली दोनों भागते हुए अभय की तरफ जाते हैं और पापा कहकर चिल्लाने लगते हैं। अभय भी उन दोनों को अपने एक एक गोद में उठा लेता है और उन्हें लेता हुआ अंदर आता है। सीमा मुस्कुराते हुए अभय को देखती और कहती है, आने के साथ ही पापा की गोद में चढ़ गए, चलो नीचे उतरो, पापा थक गए होंगे। लेकिन अभय मुस्कुराते हुए सीमा को देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं थका हूँ और अपने बच्चों के लिए तो कभी नहीं थक सकता हूँ। अच्छा सीमा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बच्चों को मैं तैयार करता हूँ। पास में ही एक आइसक्रीम पार्लर खुला है, चलो वहाँ चलकर आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम का नाम सुनकर आस्तिक और प्रणाली दोनों खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। 3 साल बाद सीमा जमीन पर हताश चेहरे के साथ बैठी हुई थी। आस्तिक और प्रणाली भी एक तरफ उदास चेहरे के साथ बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के गोद में इस वक्त कीर्ति और पृथ्वी थे। तभी दरवाजा खुलता है और अभय अंदर आता है, लेकिन उसकी हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब थी। अभय को देखकर सीमा अपनी जगह से खड़ी होती है और उसके पास आते हुए कहती है, ये क्या है, 2 दिन से कहाँ हो आप, घर क्यों नहीं आए थे और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अभय ने गुस्से भरे चेहरे के साथ सीमा को देखा और कहा, क्यों, मैं इसलिए घर नहीं आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की शक्ल भी नहीं देखनी है, मैं यहाँ बस अपना सामान लेने आया हूँ। सीमा की बात सुनकर सीमा का पूरा चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वो जल्दी से अभय का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभय हमारा परिवार है, बच्चे हैं और आप मुझसे प्यार करते हैं। अभय ने अपने हाथ को झटकते हुए सीमा से अलग किया और गुस्से में उसे देखकर कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया था। सीमा स्तब्ध रह गई थी अभय की बात सुनकर, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अभय में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। अभय अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपने कपड़ों को निकालने लगती है, लेकिन तभी सीमा अभय के पास आती है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्या कहा आपने, आप हमसे प्यार नहीं करती हैं, अगर आप हमसे प्यार नहीं करते हैं तो क्या था वो सब, क्यों हमारी इतनी परवाह करते थे, क्यों हमारी इतनी देखभाल करते थे। लेकिन तभी अभय ने जोरदार तमाचा सीमा के गाल पर मार दिया और वो जमीन पर जा गिरी। सीमा के होंठ के किनारे से खून निकलने लगा और अभय गुस्से में सीमा को देखने लगा। अभय ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो, जब मैंने एक बार कह दिया ना कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था तो यही सच्चाई है, तुम बस मेरे लिए मेरा शौक पूरा करने का जरिया थी, इसलिए ना तो मुझे तुमसे कोई लगाव है और न ही तुम्हारे बच्चों से।
सीमा गुस्से में खड़ी होती है और अभय के सामने आते हुए कहती है, क्या कहा आपने, अभी मुझसे प्यार नहीं किया था, अगर कभी मुझसे प्यार नहीं किया था तो वो सब क्या था जब आप मुझसे अपने प्यार के लिए भीख मांग रहे थे, घुटनों पर बैठकर कहा था कि सीमा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो सब झूठ था तो तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास को धोखा दिया है, मेरे प्यार का मजाक बनाया है तुमने, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बताओ अभय, कौन है वो औरत जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, कौन है वो डायन जिसकी वजह से मेरा हंसता खेलता संसार उजड़ गया है, क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में, कहाँ कमी रह गई थी मुझ में, बताओ मुझे, अब जब तक तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सीमा के एक के बाद एक सवालों से अभय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, उसने सीमा को बालों से पकड़ा और बिस्तर पर धकेल दिया, चारों बच्चे एकदम से कांप गए थे। उस दिन अभय ने अपनी बेल्ट से जब सीमा की पिटाई की थी तो आस्तिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये उसके वही पिता हैं जो उसे और उसकी माँ से इतना प्यार किया करते थे, अचानक से इतने बदल गए हैं। सीमा और बच्चों को प्यार करना और उनके परवाह करना अभय का एक दिखावा था। आस्तिक जब सीमा को बचाने के लिए आगे आया तब उसे लगा नहीं था कि अभय उसे भी मारेगा, अपने पिता की मार खाकर आस्तिक हैरान रह गया था। हालांकि उसके छोटे से शरीर पर जख्म तो बने थे लेकिन एक पल में उसके सामने जो उसके पिता की एक अच्छी छवि थी वो कहीं खो गई थी। और इसी के साथ आस्तिक अपनी नींद से जागता है, जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं बाबा मुझे मारना मत।